जो अल्लाह की तरफ से कहा गया है। तो इस उल के साथ आप और मैं अपना अल्लाह के साथ ताल्लुक़, अपनी स्लेवरी और अपना अल्लाह के साथ मोहब्बत का मामला अनाउंस करते हैं। तो स्कॉलर्स की दूसरी राय यह है कि दुआ से पहले उल असल में एक अनाउंसमेंट है, एक डिक्लेरेशन है, ऐलान है कि मैं सिर्फ अपने रब की हिफाजत में आना चाहती हूँ। सेकंड पॉइंट। अब है थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, कुल दुआ से पहले इंसान की नीयत को रीसेट कर देता है, ताकि अगर किसी भी तरह का कोई गलत एलिमेंट आ गया था तो हम सब अपनी नीयत को, इखलास को रीसेट, रिफ्रेश कर लें, ताकि बहुत अच्छी तरह से हम अल्लाह से दुआ मांग सकें। तो दिस इज़ द थर्ड पॉइंट। कुल दुआ से पहले असल में क्या है? बंदे की नीयत की दुरुस्तगी। नंबर फोर्थ पॉइंट, स्कॉलर्स कहते हैं अगेन, जब हम ये कुल प्रोनाउंस करते हैं तो हम इस बात को समझ जाते हैं कि मुझे अल्लाह की प्रोटेक्शन से पहले अल्लाह की इताअत करनी है, क्योंकि उसी ने कहा है ये दुआ पढ़ने के लिए। ये पॉइंट हम पहले भी कर चुके हैं। पॉइंट नंबर फाइव, इमाम कुर्तुबी लिखते हैं, ये आपको जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं ये पॉइंट्स आपको इमाम कुर्तुबी, इमाम अलबगवी, इमाम इबन कसीर, इमाम इबन अतिया, इन सब तफासीर के अंदर आपको मिल जाएंगे। तो फिफ्थ पॉइंट स्कॉलर्स बताते हैं कि जब अल्लाह ताला ने दुआ से पहले कुल कहा है तो ये मेंशन कर दिया कि ये सिर्फ दुआ उस वक्त ना पढ़ी जाए जिस वक्त आपको और मुझे कोई मुश्किल पेश आ जाए। ये दुआ आपकी और मेरी कॉन्स्टेंट रूटीन का हिस्सा होनी चाहिए। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये दुआ तब ना पढ़ी जाए जब हाजत हो, ये दुआ सिर्फ तब ना पढ़ी जाए जब मुश्किल आ जाए, बल्कि देर इज़ डेप्थ इन दिस कुल अकॉर्डिंग टू क्लासिकल स्कॉलर्स। वो कहते हैं इसको कॉन्स्टेंटली पढ़ना है, बिकॉज अल्लाह ताला हमें इस कुल से समझाना चाह रहे हैं दैट प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। मुश्किल आने से पहले ही आप और मैं इस दुआ को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा रखें, यानी मुश्किल के आने का इंतज़ार नहीं करो, क्योंकि अल्लाह ने कुरान का हिस्सा बनाया है, हिफाजत की दुआ दी है, रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल है, तो कॉन्स्टेंटली इसको अपनी ज़िंदगी में शामिल रखो। ये इसका फिफ्थ मफहूम है। सिक्स्थ मफहूम जो स्कॉलर्स इस कुल के अंदर सूरतुल फलक के इस पॉइंट पर देते हैं, वो कहते हैं मुसलमानों को अल्लाह की हिफाजत में आना है तो कुल बिल कौल नहीं, सिर्फ कुल बिल हाल व कलाम भी अडॉप्ट करना है। हमें सिर्फ कुल बिल कौल नहीं करना, यानी सिर्फ ज़ुबान से दुआ नहीं पढ़नी, बल्कि हमने इंशाल्लाह इन अल्लाह की इताअत की बातों को और वो प्रिकॉशंस जो हमें इंशाल्लाह शर से बचा सकते हैं, हमने इनको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है। कुल बिल कौल ना हो, कुल बिल हाल और कुल बिल कलाम भी हो। दिस इज़ सिक्स्थ पॉइंट। कुल बिल कौल सिर्फ ना हो, कुल बिल हाल और कुल बिल कलाम भी हो। सही। तो ये सिक्स पॉइंट्स हैं जो स्कॉलर्स जो हैं क्लासिकल स्कॉलर्स वो इस कुल के साथ अटैच करते हैं कि आपकी और मेरी प्रायोरिटी हो, ये प्रेसिडेंट हो हमारी ज़िंदगियों में कि हम अपने आप को अल्लाह की हिफाजत में देने की पूरी पूरी स्ट्रगल करेंगे। तो नंबर वन क्या था, मैं रिपीट कर रही हूँ इंशाल्लाह। नंबर वन, ये कुल बंदे में मोहताजी लेकर आता है रब के सामने। नंबर टू, ये अल्लाह के सामने बंदगी का डिक्लेरेशन है। नंबर थ्री, ये हमारी नीयत को खालिस करता है, हमारी नीयत को रीसेट करता है। नंबर फोर, हम अल्लाह की हिफाजत में आने से पहले अल्लाह की इताअत करने की तरफ बढ़ते हैं। नंबर फाइव, हमने मुश्किल में सिर्फ अल्लाह को नहीं पुकारना, بلکہ ایز اے روٹین ہم نے اللہ کو پکارنا ہے. اینڈ نمبر سکس, ہم نے انشاءاللہ اس قل بالقول کو جو کہ دعا ہے, اس کو ہم نے قل بالحال اور قل بالکلام میں بھی لے کر آنا ہے. اس طرح سے سورۃ الفلق کی آیت نمبر ایک شروع ہوتی ہے. قل, کہہ دیجئے, اعوذ, میں حفاظت میں آتی ہوں. اعوذ, آپ کو میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا کہ یہ فعل ہے. اعوذ کا روٹ ورڈ جو ہے وہ عین واؤ ذال ہے. ٹھیک, کیا ہے اس کا میننگ؟ حفاظت میں آنا. اگر آپ استعاذہ کی ٹرم کو یاد رکھیں تو آپ کو یاد آ جائے گا, استعاذہ ہم نے یاد کیا تھا حفاظت میں آنا. استعاذہ کی ٹرم آپ کو یاد رہے گی تو انشاءاللہ آپ کو اس اعوذ کو سمجھنا آسان ہو جائے گا. اس اعوذ کے میں آپ کو فائیو میننگس لکھوا رہی ہوں, ٹھیک ہے؟ میں آہستہ آہستہ لکھواؤں گی تاکہ آپ لوگوں میں سے جو خواتین نوٹ کر رہی ہیں وہ نوٹ کر لیں. سورۃ الفلق اور سورۃ الفلق کی آیت نمبر ایک, قل کے آپ کے سامنے میں نے میننگس رکھے اور اب اعوذ کے انشاءاللہ میں آپ کے سامنے فائیو میننگس رکھ رہی ہوں. اعوذ عین واؤ ذال سے بنا ہے اور اس کو آپ فعل مدارے کہتے ہیں, یعنی یہ وہ ورب ہے جو کہ پریزنٹ اور فیوچر دونوں پر اپلائی کرتا ہے. اعوذ کا پہلا مفہوم جو انشاءاللہ آپ کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے, اعوذ کہتے ہیں کسی پر ٹرسٹ کرتے ہوئے اس کی حفاظت میں آ جانا. کسی پر ٹرسٹ کرتے ہوئے اس کی حفاظت میں آ جانا. دوسرا اس کا مفہوم ہوتا ہے اعوذ کا, کسی ان سین خطرے سے بچنے کے لیے کسی کی حفاظت میں آنا. کسی ان سین خطرے کو, کسی ان سین خطرے کو جو ہے فیل کرتے ہوئے کسی کی حفاظت میں آنا, دوسرا مفہوم. تیسرا مفہوم جو اعوذ کے اندر آتا ہے, تیسرا مفہوم اس کے اندر آتا ہے کہ اللہ, میں اتنی کمزور ہوں کہ میں اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتی, تو میں آپ کے سامنے فل ایکٹ آف سبمیشن کے ساتھ موجود ہوں. اللہ, میں اتنی کمزور ہوں کہ میں اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتی, تو میں آپ کے سامنے فل سبمیشن کے ساتھ موجود ہوں. یہ اعوذ کے اندر تیسرا مفہوم جو ہے یہ آتا ہے. اچھا, چوتھا مفہوم جو اعوذ کے اندر آتا ہے, وہ اسکالرس کہتے ہیں ایسی پروٹیکشن کہ جس کے بارے میں انسان جانتا ہے کہ اگر میں نے یہ پروٹیکشن نہ ایڈاپٹ کی تو صرف اور صرف میرا نقصان ہوگا, صرف اور صرف میں کسی نہ کسی اینگل سے شر کا شکار ہو جاؤں گی. تو یہ فورتھ مفہوم ہے جو اعوذ کے اندر آتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ انسان یہ جانتا ہے کہ اگر میں نے یہ پروٹیکشن ایڈاپٹ نہیں کی تو سراسر میرا ہی نقصان ہے. صحیح ہے. اچھا, ففتھ مفہوم, ففتھ مفہوم جو اسکالرس اعوذ کے اندر بتاتے ہیں, وہ کہتے ہیں ایسے دشمن سے بچنے کے لیے آپ اللہ کی حفاظت میں آئیں. دیکھیں, دشمن سے حفاظت میں آنے کے لیے عربی زبان میں اجارہ کا لفظ بھی آتا ہے, ایک اور لفظ بھی آتا ہے, لیکن ایک بچنا ہوتا ہے ایسے دشمن سے جو آپ کو سر کی آنکھوں سے نظر آ رہا ہے, اور ایک بچنا ہوتا ہے ایسے دشمن سے جو آپ کو سر کی آنکھوں سے نظر نہیں آتا. تو اعوذ ففتھ پوائنٹ ایسے دشمن سے بچنے کے لیے آتا ہے جو آپ کو اپنے سر کی آنکھوں سے نظر نہیں آتا. इसलिए सूरतुल फलक हम पढ़ते हैं जादू से बचने के लिए, हसद से बचने के लिए, जेलसी से बचने के लिए, शैतान ईवल आए से बचने के लिए। ठीक है, मैं 5 पॉइंट्स रिपीट कर रही हूँ। नंबर 1, किसी पर भरोसा करते हुए उसकी हिफाजत में आना। नंबर 2, किसी अनसीन खतरे से किसी की हिफाजत में आना। नंबर 3, अपनी कमजोरी को समझते हुए किसी की हिफाजत में आना। अपनी कमजोरी को समझते हुए किसी की हिफाजत में आना। नंबर 4, इंसान का इस बिलीफ के साथ किसी की हिफाजत में आना कि अगर मैंने ये हिफाजत एडॉप्ट नहीं की तो इसमें सारा मेरा ही नुकसान है, सो आई हैव टू क्लिंग टू इट। सही। नंबर 5, अरबी जुबान में आंखों से नजर आने वाले दुश्मन के लिए इजारा का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। आऊबू ऐसे दुश्मन से बचने के लिए आता है जिसको आप देख नहीं सकते, जो विजिबल नहीं होता। इसीलिए जादू, जेलसी, ईवल आई के लिए ये सूरत जो है ये अल्लाह ताला ने हमें पढ़ने के लिए दी है। तो ये इंट्रोडक्शन एक आपको आऊज़ू के लफ्ज़ का भी मिल गया और 5 पॉइंट्स मैंने आपके सामने रख दिए। अब आगे बढ़ते हैं। कुल कहिए, आऊज़ू मैं हिफाजत में आता हूँ, बी रब बी, बी रब बी, अगेन रब का लफ्ज़ आ गया। इसलिए कि रब का मुकाम इतना ही ज़रूरी है कि जो बंदे के सामने बार बार वाज़े होना बहुत ज़रूरी है। और ये रब का नाम वो नाम है जो हमारी फितरत पहचानती है, जो हमारी रूह पहचानती है। हमारी रूह ने सबसे पहला तारुफ अल्लाह के नाम का नहीं, बल्कि हमारी रूह ने पहला तारुफ रब के नाम का किया है। सही। जब अल्लाह ताला ने आलम अरवाह में हमें एक ग्रैंड गैदरिंग में इकट्ठा किया था, आलम अरवाह कहते हैं या आलम मलकूत कहते हैं, जो भी कहते हैं इसको, सही, आलम अरवाह कहते हैं या आलम मलकूत, दोनों तरह के नाम इस्तेमाल किए जाते हैं। आप में से जिसको जो भी इस्तलाह याद रखनी आसान है। अल्लाह ने हमारी रूहों को ये नहीं कहा था अलस्तु बिखालिकुम, ये भी नहीं कहा था अलस्तु बिराज़िकुम, ये भी नहीं कहा था अलस्तु बिरहमानिकुम। अल्लाह ने वाज़े तौर पर क्या कहा था, अलस्तु बी रब्बिकुम। अल्लाह ने रब की सिफत को इंट्रोड्यूस किया था हमारी रूह के सामने। वो जो हमारी हर स्टेज को फुली कंट्रोल के साथ और फुल कुदरत के साथ और फुल इरादे के साथ आगे से आगे क्लाइमेक्स पर बढ़ाता जाता है। सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कौन है रब? वो जो हमारी हर स्टेज को फुल कुदरत के साथ, फुल इरादे के साथ और फुल कुव्वत के साथ आगे बढ़ाता जाता है। यानी मेरा हर दिन अल्लाह की कुदरत से वजूद में आता है। दैट्स द पॉइंट इन रब। और ये मुझे और आपको अपने आप को हर दिन याद कराना होता है। और यही तो आपका और मेरा इम्तिहान है। जिसने हर दिन रब को रब की स्टेशन के अंदर, रब के मुकाम के अंदर याद रखा, इंशाल्लाह वो रब की ओबीडियंस में आ जाएगा। लेकिन याद रखें, आपको ये हर दिन याद कराना कि अल्लाह मेरे हर दिन को वजूद में लाता है, ये कोई आपको याद नहीं करा सकता। नो वन विल फोर्स यू। या आपका अपना माइंडसेट ऐसा बनना चाहिए कि आप हर दिन अपने आप को याद कराएं अलस्तु बि रब्बिकुम के थ्रू कि अल्लाह मेरा हर दिन वजूद में लाता है। और इस दुआ में अल्लाह ने दोबारा इस अपने सिफत को इस्तेमाल किया है, कुल आऊदु बि रब्बी, ताकि बंदा रब का मुकाम पहचाने। तौहीद का कॉन्सेप्ट रुबूबिया का याद कर लीजिए। توحید کا اہم پلر اگر ہم رب کو روز رب کے مقام پر رکھ لیں, اس کے علاوہ کوئی مجھے پرووائڈ نہیں کرتا, اس کے علاوہ کسی نے مجھے تھاما ہوا نہیں ہے, اس کے علاوہ کوئی میرے معاملات کو سنبھالتا نہیں ہے, اس کے علاوہ مجھے کسی کے لیے اپنی زندگی کو کمپلیٹلی ڈیڈیکیٹ نہیں کرنا, اسی کے لیے زندگی کو صرف ڈیڈیکیٹ کرنا ہے اور کسی کے لیے نہیں کرنا. جب آپ اس کے لیے اپنی زندگی کو ڈیڈیکیٹ کر دیتے ہیں تو آپ بندوں کے حقوق خود بخود ادا کرنے لگ جاتے ہیں. تو سمپل فارمولا جو آپ اور میں یاد رکھیں گے کہ اللہ نے اس دعا میں ہمیں کانسٹنٹلی اپنا مقام رب والا یاد کرایا ہے, اور یہی رب کا مقام اللہ تعالیٰ تمام انبیاء کے تھرو تمام قوموں کو یاد کراتے تھے. تمام قوموں کو یاد کیوں کراتے تھے؟ تو رب کا نام وہ نام ہے جو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے قوموں کو اپنا تعارف کرانے کے لیے استعمال کیا ہے. نمبر 3, رب کا نام وہی نام ہے, یہ مت بھولیں ہم, اللہ نے اسی نام کے تھرو ہمیں انبیاء کی دعائیں سکھائی ہیں. آپ دیکھیں انبیاء کی دعائیں, ربنا آتنا فی الدنیا حسنا, ربنا فاغفر لنا, ربنا ظلمنا انفسنا. آپ کو جتنی بھی قرآنی دعائیں ملتی ہیں, آپ کو جتنی بھی انبیاء کی دعائیں ملتی ہیں, آپ نوٹ کریں, سب ربنا سے شروع ہوتی ہیں, ربنا ربنا ربنا. تو اس کو انٹرنلائز کریں, سوچ کر اس کو بولیں. یہ رب کو رب کہہ کر پکارنا انبیاء کی سنت ہے, انبیاء کا ٹریڈیشن ہے, اور جب ہم رب کو رب کہہ کر پکارتے ہیں تو اس سے الحمدللہ ہمارے اندر اعتماد اور بڑھ جاتا ہے, رب کی سویٹنس ہم محسوس کر سکتے ہیں, اور انبیاء ہمیں یہی سکھا کر گئے ہیں. جتنا آپ اللہ کو اپنے سے بلند 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 محسوس کرتی رہیں گی, اتنا انشاءاللہ آپ کے لیے عاجزی اڈاپٹ کرنا جو ہے وہ آسان ہوتا جائے گا. تو آیا قل اعوذ برب الفلق, کہیے میں حفاظت میں آتا ہوں برب الفلق, الفلق اگلا لفظ آ گیا, میں حفاظت میں آتا ہوں صبح کے رب کی. الفلق, فا لام قاف, فا لام قاف اس کا روٹ ورڈ ہے, اور میں آپ کے سامنے اس کے 4 مفہوم رکھوں گی, 4 مفہوم. نمبر 1, جیسے ہم عام طور پر اردو کے ٹرانسلیشنز میں اس آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں, قل اعوذ برب الفلق, کہیے کہ میں حفاظت میں آتا ہوں صبح کے رب کی. اچھا, فلق صبح کو بھی کہتے ہیں. فلق صبح کو کیوں کہتے ہیں؟ دیکھیں, صبح کو کہنا تو ایک بالکل سمپل مفہوم ہم لیتے ہیں نا, عربی زبان میں جب آپ جائیں گی تو فلق صبح کو کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ لٹرلی صبح جو ہے, صبح بریک کرتی ہوئی آتی ہے, یعنی ڈے بریکس آپ کہتے ہیں نا فلق کو. اٹ کریکس تھرو دا ڈارکنیس, اٹ کریکس تھرو دا ڈارکنیس. تو ایک میننگ آتا ہے صبح, جس رب کی اب تک ہم بات کر رہے تھے اس کی طاقت کے اظہار کے لیے جو لفظ لایا گیا ہے وہ ہے الفلق. میرا رب اتنا طاقتور ہے, اللہ تعالیٰ صرف ایک گلمپس دکھانا چاہ رہے ہیں اپنی ربوبیہ کا, میرا رب اتنا طاقتور ہے کہ وہ رات کے اندھیرے سے صبح کو پھاڑ کر لے آتا ہے. نمبر 1 مفہوم. نمبر 2, الفلق یا فلق بیج کو بھی کہتے ہیں, یعنی سیڈ کو بھی کہتے ہیں. سیڈ کیا کرتا ہے؟ سیڈ جب اپنے شیل کو پھاڑ کر کوٹیلیڈنس کے ساتھ باہر نکلتا ہے, तो सीडलिंग के लिए भी ये फलक का लफ्ज आता है। जब भी आप देखें फालिकुल हब कुरान में आता है, फालिकुल हब्बी व नवा, वो जो बीज को टियर करता है, फालिकुल इस्बाह। तो अल्लाह ताला के लिए कॉन्स्टेंटली ये पॉइंट जो है सामने आपने रखना है कि अल्लाह जो है वो चीज़ों को इस तरह से सामने लेकर आता है, रात के अंधेरे से सुबह की रोशनी लाता है, ज़मीन के अंधेरों के अंदर से बीज को, उसके कवरिंग को फाड़ के उसकी सीडलिंग को बाहर लेकर आता है। दो मफहूम हो गए। तीसरा मफहूम फलका के अंदर जो आता है वो आपको डिक्शनरीज के अंदर मिलता है, ख़ासतौर पर ये बलागा के अंदर पढ़ाया जाता है, बलागा की किताबों में आपको ये कॉन्सेप्ट मिलेगा। स्कॉलर्स कहते हैं कि फलाका, गौर से सुनिएगा, आई एम सो सॉरी अगर आवाज़ कट रही है, बट आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट। फलाका के अंदर स्कॉलर्स कहते हैं खलाका का मफहूम भी है, समझ आए? फलाका के अंदर खलाका का मफहूम भी आता है, यानी खलाका तख्लीक का मफहूम भी आता है। क्या मतलब है इस बात का? वो कहते हैं कि हर तख्लीक इज़ द रिजल्ट ऑफ समथिंग टियरिंग ओपन, एंड इट्स अ ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट, ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट। हर तख्लीक, स्कॉलर्स कहते हैं, इज़ द रिजल्ट ऑफ टियरिंग समथिंग, किसी चीज़ को टियर करके कोई तख्लीक जो है वो सामने आती है। इसलिए अगर आप क्लासिकल स्टडीज़ करें तो स्कॉलर्स कहते हैं कि पहाड़ में से स्प्रिंग का निकल आना, इसको भी फलक कहते हैं। ये सब वो यूज़ हैं जो आपको क्लासिकल लैंग्वेज में मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? पहाड़ में से स्प्रिंग निकलना भी फलक है, बारिश का बादलों में से आना भी फलक है, पौधों का ज़मीन से निकलना भी फलक है, बच्चे का माँ के वूम से बाहर आना भी फलक है। माअ मिनल जिबाल, सैयबुन मिनल गमाम, नबातुम मिनल अर्द व औलादु मिनल अरहाम। तो तख्लीक के अंदर क्लासिकल अरबिक में आपको मिलेगा कि तख्लीक के अंदर फलका का कॉन्सेप्ट आता है। अल्लाह ने तमाम मखलूकात को इसी एक्सप्रेशन से वजूद दिया है। दैट इज़ द पॉइंट। तो हम सब उस रब की हिफाजत में आते हैं जो हर मखलूक को बनाने वाला है। अब आपके जहन में सिर्फ सुबह ना आए बल्कि आपके जहन में हर मखलूक आ जाए, फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक टू मैक्रोस्कोपिक। इसीलिए आपको क्लासिकल एक्सप्लेनेशन में सूरतुल फलक की पहली आयत का तर्जुमा क्या मिलेगा, वो अक्सर इसका तर्जुमा ऐसे लिखते हैं, मैं अगर आसान अल्फाज में बताऊं, कुल आऊदु बि रब्बिल फलक, ही इज़ द मास्टर ऑफ द बर्थ, मास्टर ऑफ द डे ब्रेक, मास्टर ऑफ द रेन, मास्टर ऑफ द स्प्रिंग, मास्टर ऑफ द प्लांट। इस तरह से वो इसको डिफाइन करते हैं। तो ये है फलका का आपके सामने मफहूम। अब एक बहुत गहरी बात है, सूरतुल फलक के आप सारे मफहूम जो मैंने आपको बताए आप जहन में रखें। सुबह का फाड़ने वाला है और वो जो है दाने को फाड़ता है, एंड द लास्ट वन आई हैव अल्हम्दुलिल्लाह डिफाइंड इट के फलका के अंदर खलका का मफहूम है। स्कॉलर्स ने इतनी खूबसूरत बात दो जुमलों में कही है कि आप इसके ऊपर पूरी किताब लिख सकते हैं। वो कहते हैं कि अल्लाह ने सूरतुल फलक और सूरतुल नास पढ़ने वालों को इस आयत और इन आयात के ज़रिए बड़ी तसल्ली दी है। और वो तसल्ली क्या दी है कि देखो हर सीन और अनसीन का खालिक सिर्फ अल्लाह है, हर खतरे से बचाने की ताकत सिर्फ उसको है। और ये जो आज हमारे साइकोलॉजिकल फियर्स हैं, ये जो हमारे सोशल फियर्स हैं, उसमें इस नेचुरल फिनोमेना को, तख्लीक के नेचुरल फिनोमेना को एक बहुत डीप कनेक्शन मिलता है। अल्लाह जो अंधेरों को क्रैक करके सुबह ला सकता है, अल्लाह जो पहाड़ों को फाड़ कर चश्मे बहा सकता है, वो अल्लाह मेरी ज़िंदगी की अंधेरी परेशानियों के अंदर से खैर का नूर नहीं फूट सकता, खैर नहीं निकाल सकता? जैसे रात में शर होता है सिर्फ अल्लाह ही बचाता है, ऐसे ही ज़िंदगी में जितनी मुश्किलात हैं उनको टियर करके, उनको फाड़ के खुशियाँ लाने की कैपेसिटी रब के पास है। रब ये कर सकता है, रब हमारी ज़िंदगी में से ज़ुलुमात को दूर कर सकता है। और हमारा ईमान होना चाहिए कि रब को पुकारने से अंधेरे दूर होते हैं। ये एक ही आयत है, एक ही आयत जो बहुत गहराई के साथ हमें बहुत कुछ सिखाती है। मेरी ज़िंदगी की परेशानियों को टियर करते हुए खैर आ सकती है जब मैं अपने रब से इस खैर को तलब करूँगी। बस मुझे तलब करने वाला बनना चाहिए। अल्लाह ताला हम सब से ये छोटी छोटी काविशें कबूल फरमाए और हमारी गलतियों और कोताहियों से दरगुजर फरमाए। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।